मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए अभी के माहौल को देखते हुए एक ऐसे विषय पर अपन बात करें जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और वह विषय है वैज्ञानिक चेतना की। सच पूछे तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का आतंक फैला हुआ है, तो हमारे सामने, हम सबके सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि कैसे हम अपने को बचाएं और साथ ही साथ अपने लोगों को बचाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो सबसे बड़ा अस्त्र हो सकता है एक व्यक्ति के तौर पर, वह है वैज्ञानिक चेतना। वैज्ञानिक चेतना की बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं, जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से लगातार कोशिश में लगा हुआ है। सच पूछे तो जो भी स्थितियां हैं और उन स्थितियों से निपटने के लिए जो जो भी कोशिशें की जानी चाहिए, वो सारी कोशिशें सार्वजनिक स्तर पर की जा रही हैं, और डेफिनेटली व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग उतनी ही सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन कुछ छुटपुट इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं, चैनल्स पर भी देखते रहते हैं, जो साफ तौर पर हमें यह दिखा रही होती है कि जो किया जाना चाहिए, जिस तरीके से किया जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ढिलाई लग रही है। दोस्तों, ऐसे समय में सच पूछिए तो सबसे अधिक वैज्ञानिक चेतना की जरूरत होती है। और जब मैं वैज्ञानिक चेतना की बात कर रहा हूं तो आप इसे कतई धर्म, अध्यात्म, इन सब से अलग मान करना चलें। ये तो हमारा अपना दिमाग है, या कह लीजिए कि हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने धर्म को सीधे विज्ञान के विरोध में खड़ा कर दिया है। और अदरवाइज सच पूछिए तो जो धर्म है वही विज्ञान है, और जो विज्ञान है वही धर्म है। वेदों में जो विज्ञान की परिभाषा दी गई है, ज्ञानम विज्ञानम च, विज्ञान शब्द वहां है। वहां यह कहा गया है कि जो भी हमारे पास ज्ञान होता है, जब हम उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो वही विज्ञान बन जाता है। यानी कि ज्ञान और विज्ञान में कोई बहुत विरोध नहीं है। विरोध क्या नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये बहुत स्थापित सत्य है कि हम लगातार रिसर्च करते रहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, और जब हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है या ज्ञान हमारा किसी बात को ढूंढ नहीं पाता, तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, किसी शक्ति पर विश्वास करने लगते हैं। हमें यह लगने लगता है कि नहीं, ये ज्ञान की पकड़ से परे है, और उसे फिर हम धर्म का नाम दे दीजिए, आप युग अध्यात्म का नाम दे दीजिए, ईश्वर की शक्ति का नाम दे दीजिए, जो भी आप देना चाहें दे दीजिए। लेकिन आप देखिए कि जिन चीजों के बारे में कुछ साल पहले तक हम नहीं जानते थे, आज हम उन्हें जान चुके हैं। हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, हम मंगल ग्रह पर उतर चुके हैं, तो अब क्या कहा जाए? किसी समय चंद्रमा के साथ हमारे संबंध क्या थे, और आज हमारे चंद्रमा के संबंध क्या हो गए हैं? ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि लगातार हम अपने ज्ञान का विस्तार करते चले गए, और जो ज्ञान का विस्तार होता चला जाता है तो इसे ही हम कहते हैं विज्ञान। लेकिन इस विज्ञान का मतलब ये नहीं कि वो कहीं ईश्वर के क्षेत्र में दखलंदाजी कर रहा है, नॉट एट ऑल। वह जो अज्ञात ज्ञान है उसको प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसीलिए कभी भी कहीं भी हमें धर्म और विज्ञान, इन दोनों में विरोध मानकर नहीं चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, जिस विज्ञान की बात मैं कह रहा हूं, तो उस विज्ञान की परिभाषा क्या है? बहुत ही सरल सी परिभाषा है, और वो परिभाषा यह है कि आप देखिए कि हमारे सामने घटनाएं घटती रहती हैं, लगातार घटनाएं घटती रहती है, हर क्षण घटनाएं घटती रहती हैं, घटनाएं घट रही हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे ईश्वर है, या पहले से ही ये सब कुछ निर्धारित था, ईश्वर इस घटना को घटित करता है, वही इसे संभालेगा, सारी चीजें उसी के ऊपर है, उसी के हाथ में है, तो ये बात विज्ञान से थोड़ी सी हटकर हो जाती है। लेकिन जब हम हर घटना के लिए ये कहने लगते हैं कि नहीं, अगर ये घटना घटी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो जो कारण है वो इसी संसार में है, भले ही हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वह कारण है। और सच पूछे तो विज्ञान करता क्या है? विज्ञान इन्हीं कारणों की खोज करता है कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये क्यों हुआ। सोच करके देखिए कि महाभारत में जो प्रसंग आता है कि संजय अपने महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे? यह अविश्वसनीय था, बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन विज्ञान ने सोचा कि नहीं, यदि किसी व्यक्ति की यह कल्पना ही सही है या कभी ऐसा हुआ भी होगा तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, कैसे सुनाया जा सकता है। और आप देखिए कि आज आप दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना का लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं, यानी कि विज्ञान ने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो अभी तक हमारी पहुंच से बाहर का था। तो दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग में केवल यह बात बैठा लेते हैं कि यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई भौतिक कारण ही है, तो डेफिनेटली फिर हम उसके निवारण के लिए यथार्थवादी उपाय करते हैं, वैज्ञानिक उपाय करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो कोरोना का संकट है उस दौर में इस उपाय की बेहद जरूरत है। जरूरत इस मायने में है कि देखिए, डॉक्टर हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेने की बात कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, हम घर से बाहर न निकलें, अगर थोड़ा भी फीवर आता है तो हम उसका प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें, डॉक्टर्स से सलाह लें, हमारा भोजन किस तरीके का हो, हमारी जीवन पद्धति किस तरीके का की हो, हम सूर्य की किरणों को थोड़ा अंदर घर के अंदर आने दें, यानी कि अपनी खिड़कियां दरवाजे खुले रखें, क्रॉस वेंटिलेशन रखें, थोड़ी देर के लिए हो सके तो सूर्य की किरणों में जाकर के बैठ भी जाएं, खासकर 11 बजे से 2 बजे तक के बीच में, तो इससे हमारे शरीर को विटामिन डी भी मिलता है और एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि ताकत भी मिलती है हमारी हड्डियों को। व्यायाम करें, खासकर प्राणायाम की बात बहुत कही जा रही है, इससे हमारे फेफड़े मजबूत हो पाएंगे, हमारा इम्यून पावर बढ़ पाएगा। और इम्यून पावर बढ़ाने के लिए बकायदे कुछ अलग किस्म की हर्बल दवाइयां, जैसे कि आप यूं कह लीजिए कि गिलोय की बात की जाती है, हल्दी खाने की बात कही जाती है कि कच्ची हल्दी का सेवन बढ़ा दीजिए, तो इस तरह के उपाय हम करें। नींबू का प्रयोग बढ़ा दें, आंवले का प्रयोग बढ़ा दें, यानी कि हमारे शरीर में जब विटामिन सी अधिक जाएगा तो हमारे शरीर में इस कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये सारे वैज्ञानिक उपाय हैं और मुझे लगता है कि हमें ये सारे उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ जो मैं पहले कह चुका हूं, ईश्वर पर आस्था रखते हुए, क्योंकि हमें अपने सोच को लगातार पॉजिटिव बनाए रखना है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, बल्कि इस चुनौती का सामना करने के लिए और अधिक ताकत जुटाना है। और मुझे लगता है कि आप सब मेरे प्रिय श्रोता जो थोड़ा बहुत मुझ पर विश्वास भी करते होंगे, मुझसे प्रेम भी करते हैं, मेरी इन बातों पर यकीन करके इसे व्यवहार में लाएंगे और अपना और अपने लोगों के जीवन को बचाने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दोस्तों, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, आपके अपने परिजन स्वस्थ रहें और पूरी हिम्मत के साथ इस कोरोना वायरस का मुकाबला करते रहें। अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।